आरव आयु के साथ होटल साज के रूम में था। पहले तो आरव आयु को अकेली छोड़कर वहां से चला गया था, पर बाद में उसे परेशान करने के लिए वो वापस आ गया था। आरव बिल्कुल नेकेड पोजीशन में ब्लैंकेट में सोया हुआ था, वहीं आयु उससे दूर बिना कुछ ओढ़े उसी बेड पर लेटी थी। आयु को परेशान करने के लिए आरव ने एसी का टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दिया ताकि उसे ठंड लगे। आरव का प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। कुछ ही दिन में कमरा इतना ठंडा हो गया मानो वहां बर्फ गिरी हो। आयु को पतली सी नाइट ड्रेस में ठंड लग रही थी तो वो चिढ़ते हुए उठी और आरव पर चिल्लाकर बोली, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? मैंने क्या किया? आरव ने अनजान बनते हुए कहा। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो बिल्कुल सीधे साधे हो, आयु ने गुस्से में जवाब दिया और आरव के पास आकर उसके हाथ से एसी का रिमोट छीन लिया। आरव ने कुछ नहीं पहना था इसलिए वो बाहर भी नहीं आ सकता था। अब करो जो करना है, बोलते हुए आयु ने टेम्परेचर बढ़ाया और रिमोट आरव से दूर रख दिया ताकि वो बाहर निकालकर उसे ले ना सके। फिर आयु ने आरव की तरफ देखा तो वो तिरछी निगाहों से उसे घूर रहा था। आरव सर्द लहजे में बोला, आई टेल यू, डोंट चैलेंज मी मिसेस खुराना, वरना मैं ऐसे ही बाहर निकल जाऊंगा और तुम्हें मुझे देखना भी पड़ेगा। बोलते हुए आरव रुक गया और फिर कुछ पल रुककर आगे बोला, वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो पहले भी दो बार मुझे देख लिया है, इनफैक्ट वो भी जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मुझे अभी इसी वक्त देसी का रिमोट चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा, आरव ने हल्के गुस्से में कहा। वो उठने ही वाला था कि तभी आयु ने तेजी दिखाते हुए रिमोट पकड़ा और जल्दी से आरव के हाथ पर लाकर रख दिया। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा है, जो करना है करो, जब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तब तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा ना, आयु ने हल्का चिल्लाकर कहा। आरव पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से टेम्परेचर डाउन किया और कहा, इतनी ही ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट में आ जाओ, किसी ने रोका थोड़ी है मिसेस खुराना। आयु को परेशान देखकर आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी। ठंड की वजह से आयु का चेहरा लाल हो गया और उसे छींकें आने लगी थीं। मजबूरन आयु को ब्लैंकेट के अंदर आना ही पड़ा। आयु आरव से थोड़ा दूर सो रही थी। उसके ब्लैंकेट के अंदर आते ही आरव ने लाइट्स ऑफ की और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं सोने के कुछ देर बाद ही आयु को नींद आ गई थी। आरव ने हल्की डिम लाइट में उसका चेहरा देखा जो सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। आयु की तरफ देखकर आरव ने धीरे से कहा, तुम तो मेरी एम्बर आइड गर्ल थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहली नज़र में ही तुम्हारी आंखें जाने पहचाने लगी थी, न जाने क्यों तुम्हें समझने में मैंने धोखा खाया। कहकर बदला ले लेती तो इतना दर्द नहीं होता, पर प्यार का सहारा क्यों लिया मिसेस खुराना? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर तुम्हारे धोखे की कीमत तुम्हें अदा करनी होगी। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, पर तैयार रहना, जल्द ही तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ें छीनने वाली हैं। ऐसे ही सोचते हुए आरव को नींद आ गई थी। उसने एसी का टेम्परेचर हाई नहीं किया था और रात में कमरे में ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। सुबह जब आयु की आंखें खुलीं तो वो आरव की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। आरव ने उसे काफ़ी कसकर पकड़ रखा था। आयु कसमसाते हुए बोली, आरव अभी के अभी उठो, तुमने मुझे कैसे टच कर रखा है? ऊपर से तुमने कपड़े भी नहीं पहन रखे। आरव नींद में ही बोला, हाँ तो तुम ही आई थी रात को मेरे पास, मैंने कोई ज़बरदस्ती तुम्हें खींचकर अपने पास नहीं लाया था। हाँ तो नींद में हो जाती है इंसान से गलती, अब उड़ गई हूँ, अब तो छोड़ दो, आयु ने चिढ़कर कहा और खुद को आरव की बाहों के कैद से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। अचानक आरव ने अपनी आंखें खोली और सर्द आवाज़ में कहा, मेरी कैद से छूटना इतना आसान नहीं है मिसेस खुराना, अभी तो तुम यहाँ की नई नई कैदी बनी हो, सज़ा भुगतनी बाकी है। हाँ ठीक है, जो सज़ा देनी है दे देना, पर फिलहाल के लिए मुझे छोड़ दो, आई कांट एक्सप्रेस यू कि तुम्हारे साथ इस वक्त मुझे कितना वियर्ड फील हो रहा है, आयु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आयु को लगा उसे काफ़ी देर तक आरव से रिक्वेस्ट करनी होगी, लेकिन आरव ने उसे एक झटके में छोड़ दिया। आयु ब्लैंकेट से बाहर निकली और सीधी बाथरूम में चली गई। उसने फ्रेश होकर वापस वहीं साड़ी पहन ली थी। आयु बाथरूम से बाहर आई तब उसके हाथ में आरव के कपड़े थे जो कल रात उसने खोले थे। उसने आरव की तरफ कपड़े फेंकते हुए कहा, जल्दी से इन्हें पहनो, हमें घर भी चलना है। मैं घर नहीं जा रहा, तुम्हें जहाँ जाना खुद ही चली जाना, मेरे पास एक और बेहतर तरीका है जिससे तुम आसानी से अपने घर या हॉस्पिटल पहुंच सकती हो। ऐसा करो ना, उस रोहन सिंह को कॉल लगा लो, जैसे उसने तुम्हें ट्रेनिंग दी वैसे ही तुम्हारी डेस्टिनेशन पर भी ड्रॉप कर देगा। बातों बातों में आरव ने आयु को ताना मारा। आयु ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगी। इस बार आरव ने आयु को जाने से रोका भी नहीं। वहीं आयु के जाते ही आरव ने कबीर को कॉल किया और कहा, टिकट बुक कर लो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। आरव की बात सुनकर कबीर ने हैरानी से कहा, आई डोंट नो आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, पर अभी के लिए आपको उनसे दूर रहना चाहिए, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, वैसे भी कोई नहीं जानता इस वक्त वो कहाँ पर है, थोड़ा रुक जाइए, अगर आप उनके पास गए भी तो उन्हें सच का पता चल जाएगा, खासकर आपकी शादी का, ये आपके और आपकी वाइफ के लिए सही नहीं रहेगा। कबीर ने आरफ को समझाने की कोशिश की। वो जानता था कि आरफ कहाँ जाने की बात कर रहा है। मैंने तुम्हें एडवाइस लेने के लिए कॉल नहीं किया है, जितना कहा है उतना करो, वरना मैं खुद भी टिकट बुक कर सकता हूँ। आरफ ने रूखे तरीके से जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं कबीर ने कॉल कट होने के बाद अपना सिर पकड़ कर कहा, अब आपने कह दिया है तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं आपकी जिद और आपकी वाइफ अब किस किस को खतरे में डालेगी। जो भी हो, आप उनसे मिलने का प्लान कर रहे हो तो अब आपकी वाइफ को माहिरा मैम से कोई नहीं बचा सकता। कबीर समझ गया था कि आरफ के मन में क्या चल रहा है और वो माहिरा से क्यों मिलना चाहता है। कबीर ने अपनी तरफ से आरफ को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरफ ने उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया। मजबूरन कबीर को आरफ के लिए दुबई की टिकट बुक करवानी ही पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मंथन अपने घर पर मौजूद था। वो आयु के बताए हुए काम पर लगा हुआ था। मंथन अपने घर के लिविंग रूम में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था और वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। मंथन ने कॉल पर कहा, मिस्टर दत्ता, मैंने आपको पूरी सिचुएशन समझा दी है। उनकी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, क्या ऐसे में उनका डिवोर्स हो पाएगा? मंथन आयु और आरफ के डिवोर्स के लिए लॉयर से बात कर रहा था। उसकी बात का जवाब देते हुए मिस्टर दत्ता ने कहा, इतना आसान तो नहीं है। अगर उन्हें अभी अलग होना है तो हम शादी रद्द करने की एप्लीकेशन डाल देंगे। अगर डिवोर्स के लिए दोनों पक्ष राजी है फिर भी कम से कम 6 महीने का टाइम तो लगेगा ही। नहीं, मुझे 6 महीने का टाइम नहीं चाहिए। आप शादी रद्द होने के पेपर बनवाइए, आयु उस पर साइन कर देगी और अपने हस्बैंड से भी करवा ही लेगी। चलिए, मैं बाकी की बातें ऑफिस में मिलकर करता हूँ, कहकर मंथन ने कॉल कट कर दिया। उसने मोबाइल नीचे रखा ही था कि उसकी नज़र सामने खड़ी साक्षी पर गई, जिसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी।
साक्षी मंथन के पास आई और प्लेट टेबल पर रख दी। वो मंथन की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, तुम आरव और आयु की शादी कैंसिल क्यों करवाना चाहते हो? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मंथन, तुम मुझे अभी सब सच बताने वाले हो। साक्षी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मंथन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और साक्षी को सच बता दिया कि उसकी और आयु की क्या डील हुई थी। डील के बारे में बताने के बाद मंथन ने कहा, आयु ने आरव से इसलिए शादी की थी ताकि वो अनु के कातिल का पता लगा सके। अब उसे सच पता चल गया है, आरव ने अनु को उस रात टेरेस से पुश नहीं किया था, तो वो इस शादी में नहीं रहना चाहती। सीरियसली मंथन, शादी कोई बच्चों का खेल है जो आज रहना है कल नहीं, और तुम उसका ध्यान दे रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले तुम्हारी बातों से तुम एक मैच्योर इंसान लगे थे कि अपने प्यार को फ्रीडम देकर तुम अच्छा काम कर रहे हो। मुझे नहीं पता था तुम इतना कुछ प्लान करके बैठे हो। साक्षी ने गुस्से में मंथन को बहुत कुछ बोल दिया। फिर उसकी नज़र मंथन के लैपटॉप की स्क्रीन पर गई, जिस पर आज भी अनु और उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। तुम आयु से प्यार नहीं करते हो, अचानक साक्षी के मुंह से निकला। साक्षी की बात सुनकर मंथन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है आप इस फ़ोटो को देखकर मुझे जज कर रही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे आयु से प्यार नहीं है या फिर वो मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तुम्हें वो अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन तुम्हें उससे प्यार नहीं है, एक अट्रैक्शन या अफेक्शन हो गया है, वो भी अनु की वजह से। दोनों की वाइब और आंखें एक जैसी हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला मंथन कि तुमने मूव ऑन कर लिया है, बोलते हुए साक्षी की आंखें नम हो गईं। उसने मंथन के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, एक बेवकूफ़ी आरफ के साथ शादी करके आयु कर चुकी है, दूसरी तुम मत करो। मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर तरीके से जानती हूँ, तुम्हें उससे प्यार नहीं है। है नहीं तो हो जाएगा दी, वो जब भी आसपास होती है मुझे मेरी अनु के पास होने का एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने अनु को फिर से पा लिया। प्लीज़ आप इस मामले में कुछ मत कहिए, मैं खुद देख लूँगा, मंथन ने रूखे तरीके से कहा और अपनी लैपटॉप स्क्रीन ऑफ करके वहाँ से चला गया। वो भी जानता था कि उसके दिल में आयु को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर बना है उसकी वजह क्या है। वहीं साक्षी भी अब सब समझ गई थी। साक्षी ने मंथन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया। उसके जाने के बाद साक्षी ने खुद से कहा, सब उलझ के रह गया है, ऐसे में सिर्फ आरव ही है जो सब ठीक कर सकता है, मुझे उससे बात करनी होगी।